ओके, उसके बाद हमारे पास है अनस्टेबल सोराइसिस, जिसको हम एक्टिव सोराइसिस या फिर इरप्टिव इन्फ्लामेटरी सोराइसिस भी कहते हैं। अच्छा, अगर कोई सा भी क्रॉनिक प्लाक सोराइसिस वाले पेशेंट जो है ना, वो सडनली ये कहे कि उसके जो प्लाक्स है ना, वो ज़्यादा इरिथमेटस हो गए हैं, उसमें अभी ज़्यादा पेन, इचिंग या बर्निंग होती है, न्यू लेजन्स अपेयर कर रहे हैं, कोइबनर फिनोमिला ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आ रहा है, और जो है ना, या ये एस्पेक्ट्स हैं, यानी कि डिजीज़ जो है ना, वो सडनली एग्रेवेट हो गई है, तो उसका मतलब ये है कि पेशेंट जो है ना, अभी अनस्टेबल फेज़ में है, हम उसको कहते हैं अनस्टेबल सोराइसिस। तो अनस्टेबल सोराइसिस के क्या क्या प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हो सकते हैं? नंबर वन, अगर सडनली जो है ना, स्टीरोइड्स को विदड्रॉ किया जाए, चाहे वो सिस्टमिक या पोटेंट टॉपिकल कॉर्टिकल स्टेरॉइड्स हैं, उनको सडनली विदड्रॉ करना, ट्रीटमेंट विद एनी इरिटेंट सब्सटेंसेस लाइक टार और डाइथ्रिनॉल, कोई सिस्टमिक इन्फेक्शंस हो, हाइपोकैल्सीमिया हो या कोई इमोशनल अपसेट हो सीवियर किस्म का, तो फिर उसमें क्या होता है कि पेशेंट की डिजीज सडनली ना एग्रीवेट हो जाती है, उसको हम कहते हैं अनस्टेबल सोराइसिस। सो व्हाट्स द फेट ऑफ द अनस्टेबल सोराइसिस? इसके या तो वो वापस अपनी स्टेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जो क्रॉनिक प्लाक सोराइसिस वाला है, या तो फिर वो मज़ीद और ज़्यादा वर्स होके पस्टुलर सोराइसिस या फिर एरेथ्रोडर्मा के अंदर पेशेंट जा सकते हैं। तो इसमें ना एक टेस्ट ये लिखा हुआ है कि इसमें हम क्या चेक कर सकते हैं, सीरम लेवल्स ऑफ इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 17 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट आर हायर इन पेशेंट ड्यूरिंग द अनस्टेबल फेज ऑफ द डिजीज। मैंने वार्ड राउंड में तो कभी भी नहीं सुना और मुझे पता भी नहीं है कि ये कैसे टेस्ट करते हैं। बहरहाल, ये यहाँ पे सर लिखा हुआ है कि अनस्टेबल सोराइसिस के सीरम लेवल्स के अंदर ना इंटरल्यूकिन 7 और इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 17 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का लेवल हायर हो जाएगा। दैट्स इट।